जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव गौर पूर्णिमा के दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन है, तो इसीलिए कुछ उनकी बाल्य लीलाएँ देखेंगे हम। और लीलाओं का अर्थ ही है कि भगवान की जो लीलाएँ हैं, जैसे भगवान कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। तो भगवान की लीलाओं को अगर हम तत्वतः समझे तो उसके लिए उससे क्या लाभ होगा, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर हमें इस संसार में वापस नहीं आना पड़ेगा। बहुत सारे इस संसार में ज़्यादातर लोग हैं इंटरेस्टेड होते हैं कि दूसरों की लाइफ स्टोरी या उसमें रुचि सबकी रहती है, इसलिए लोग फिल्म देखने जाते हैं या कुछ नाटक देखते हैं या काफ़ी सारे लोग हैं बुक्स नॉवेल्स पढ़ते हैं। तो ये संसार की अलग अलग स्टोरीज है जिसको लोग पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर जीव में इच्छा होती है कि विभिन्न प्रकार के जो कार्यकलापों को देखे, समझे, जाने, उसमें अलग अलग प्रकार के रस होते हैं, उसका आस्वादन करे। पर क्योंकि भौतिक व्यक्ति है, उसकी भौतिक क्रियाओं को कितना भी हम सुने, देखे और समझने का प्रयास करें, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं। पर जो भगवान की लीलाएं है वो दिव्य है, इसलिए इसको जितना भी बारम्बार सुने, जैसे भगवान कृष्ण की लीलाएँ प्रसिद्ध हैं, उस प्रकार भगवान राम की लीलाएँ भी प्रसिद्ध है। पर हजारों सालों से ऋषि मुनि और कथाकार भक्त उनके गान करते रहते हैं, हाँ। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के भी काफ़ी सारी कृष्ण की तरह ही बाल्य लीलाएँ हैं। और ये जो लीलाएँ हैं उसमें काफ़ी सारी लीलाएँ कृष्ण जैसी हैं, कुछ लीलाएँ अलग भी हैं। और चैतन्य महाप्रभु के जीवन के प्रमुख जो भाग है तो उनका बाल्यकाल है, फिर उनका पांडित्य की लीलाएँ काफ़ी सारी हैं, और फिर संकीर्णन लीलाएँ उनकी है, और फिर संन्यास के बाद की लीलाएँ हैं। तो ये सब में भी उनकी अलग अलग उनका जो व्यक्तित्व है अलग अलग रूप से प्रकट होता है। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु का जन्म है, जब फाल्गुन पूर्णिमा के समय हुआ, शाम को उस समय है, सूर्य ग्रहण था, इसीलिए अधिकतर लोग बंगाल में, आपको पता है कि गंगा नदी के किनारे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, तो जैसे ग्रहण होता था तो उस समय लोग है नदी में स्नान करने जाते हैं पवित्र होने के लिए। तो उस समय नदिया में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में महाप्रभु का जन्म हुआ, मायापुर गाँव में, तो वहाँ पर है काफ़ी सारे ब्राह्मण, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें न्याय के बहुत सारे पंडित रहते थे, और ये अधिकतर है दुर्गा के उपासक थे या कई लोग तो नास्तिक भी थे। तो प्रायः वो भगवान का नाम ऐसा मानते थे कि स्नान करते समय एक दो बार ले लेना है, ज़्यादा नाम नहीं लेना है, हाँ। कभी कभी आप लोग माला करते हैं तो कोई कहता है कि इतना नाम लेने की क्या जरूरत है, सुबह शाम याद कर लो भगवान को, फिर अपना काम करो, हाँ। तो ऐसे इनकी ही मान्यता थी। पर उस दिन, क्योंकि महाप्रभु का प्रागट्य हुआ, तो महाप्रभु का आविर्भाव का एक प्रमुख जो कारण है युग धर्म संकीर्तन का प्रचार करना, तो सब लोग स्नान करने गए और सब लोग हरी हरी इस प्रकार से कीर्तन कर रहे थे। और इस प्रकार से महाप्रभु ने अपने प्रागट्य से ही दिखा दिया कि उनके प्रागट्य होने का और इस संसार में आने का एक प्रमुख प्रयोजन है संकीर्तन का, पूरे विश्व में प्रचार करना। और महाप्रभु हम सबको भी यही शिक्षा बाद में देकर गए। और क्योंकि ये जगन्नाथ मिश्रा जो उनके पिताजी थे और सची माता उनकी माता का नाम है, तो उनकी आठवीं संतान थे, उससे पहले आठवीं या नौवीं, उनके पहले उनकी कुछ पाँच छः या सात बहनें जन्म के बाद ही मृत्यु हो गया था। उनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। और जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, फिर कुछ दिन के बाद, तो पहले प्रथा होती है कि बच्चे को बाहर नहीं लेकर जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद उसको बाहर निकालते हैं, और फिर उनका नामकरण संस्कार हुआ। तो उनके जो नाना है नीलांबर चक्रवर्ती, वो ज्योतिष के काफी बड़े विद्वान थे, और उन्होंने जब उनके ग्रह नक्षत्र देखे, कुंडली देखी और ध्यान किया, तो उनको लगा कि ये तो स्वयं पूरे ब्रह्मांड का पोषण करने वाला है, तो इसका नाम होना चाहिए विश्वंभर। तो इस प्रकार से महाप्रभु का नाम जो उनके जन्म अक्षर के अनुसार विश्वंभर रखा गया। और क्योंकि निमाय जो है चैतन्य महाप्रभु, तो जब जन्म लिए उसके बाद जैसे कुछ दिन बीते तो अक्सर रोया करते थे, तो वहाँ मोहल्ले की सब स्त्रियाँ इकट्ठा होकर उनको चुप करने के लिए, शांत करने के लिए हरी हरी ऐसा कीर्तन करवाती थी, हाँ हरी बोल, तो तब निमाय हैं। अभी भी गांव में अक्सर बालकों को सबसे पहले राधे राधे या सीताराम या हरी बोल इस प्रकार से सिखाया जाता है, यही शब्द वो पहले सबसे पहले सुनते हैं। हाँ, तो उस प्रकार से जब महाप्रभु है बारंबार हरि का कीर्तन होता था तब शांत हो जाते थे, तो इसीलिए सब लोग उनको गौर हरि, हाँ गौर हरि के नाम से भी बोलने लगे कि गौर हरि है, इनका वर्ण है गोरा है या सुवर्ण जैसा है, और गौर हरि के नाम से भी, और एक नाम है उनका प्रसिद्ध गौरांग, क्योंकि महाप्रभु की भविष्यवाणियां शास्त्रों में जहाँ भी की गई है वहाँ पर इस लक्षण का भी वर्णन किया गया है। जैसे महाभारत में बताया गया है कि हेमांग वर्णांग गौरांगो, कि उनके शरीर का वर्ण सुवर्ण जैसा होगा पीला और गौर वर्ण होगा, कृष्ण का वर्ण है काला, पर यहाँ पर उनका जो वर्ण है कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, श्रीमद् भागवत में एक प्रसिद्ध श्लोक है। ये श्लोक तब आता है कि जब है नव योगेंद्र है, वो आते हैं निमि राजा के पास और उनको पूछते हैं विभिन्न युगों में भगवान किस किस रूप में प्रकट होंगे और क्या क्या संदेश देंगे और किस प्रकार से लोग उनकी पूजा करेंगे। तो तीन युगों का वर्णन करने के बाद जब कलयुग की बात आई तब उन्हें एक श्लोक बोला, श्लोक इस प्रकार से, कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पाशदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशः। तो यहाँ पर भी जो है कृष्ण वर्णम, अब कृष्ण शब्द का दो अर्थ है, एक तो कृष्ण भगवान कृष्ण, एक कृष्ण का अर्थ है काला भी होता है, कृष्ण फलकम ब्लैक बोर्ड संस्कृत में, तो कृष्ण वर्णम के भी कई अर्थ हो सकते हैं, वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का अर्थ जो वर्णन करता है वो भी होता है, वर्ण का अर्थ ये भी होता है कि जिसके नाम में कृष्ण शब्द है। तो उस प्रकार से जीव गोस्वामी इस श्लोक का काफी विश्लेषण तत्व संदर्भ में करके बताते हैं कि यहाँ पर जो है त्विषा अकृष्ण, त्विषा कृष्ण का भी दो अर्थ हो सकता है, त्विषा कृष्ण और त्विषा अकृष्ण, मतलब जिनका वर्ण गोरा है या जिनका वर्ण काला है। तो कृष्ण वर्ण त्विषा अकृष्ण, दो बार भी कृष्ण कृष्ण वर्ण नहीं हो सकता है। तो फिर वो कहते हैं कि पहले कृष्ण वर्ण का अर्थ है जो कृष्ण का वर्णन करता है या जिनके नाम में कृष्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो नाम प्रसिद्ध हुआ संन्यास के बाद श्री कृष्ण चैतन्य, तो उनमें कृष्ण नाम है, कृष्ण वर्ण का प्रयोग किया गया है और वो हमेशा कृष्ण का वर्णन करते हैं। और कृष्ण त्विषा अकृष्ण, उनका वर्ण है गोरा है, तो इसीलिए गौरांग नाम है बाल्यकाल में प्रसिद्ध हुआ गौरांग। और एक नाम प्रसिद्ध है निमाय, नीम का पेड़ अभी भी आप महाप्रभु के जन्म स्थान पर जाएंगे तो वहाँ पर है। और अक्सर गांव में क्या होता है कि जो बालक काफ़ी सालों के बाद जन्म लेता है, जैसे माता पिता का एकलौता बेटा होता है, तो उनको ऐसे कुछ सामान्य नाम देते हैं, जो जैसे यहाँ गुजरात, मैं गुजरात में हूँ, तो या भीखो मतलब बेगर, ऐसे ऐसे भी नाम भी देते हैं, अकेला लड़का होता है तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से सब जगह प्रथा है। तो निमाय, नीम के पेड़ के नीचे जन्म लिया तो निमाय भी नाम प्रसिद्ध हुआ। तो गांव में ऐसे कई पेट नेम्स भी होते हैं, पर गौरांग गौरहरि ये सब नाम है कि जिनका महाप्रभु की भविष्यवाणियों में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से कई नामों से है निमाय, और विशेष रूप से बाल्यकाल में निमाय अधिक लोग, क्योंकि बोलने में आसान है, गौरहरि निमाय इत्यादि बोला करते थे। तो उनके काफी सारे बाल्यकाल के लीलाएं हैं। एक लीला ऐसी है कि जो कृष्ण के साथ भी होते हैं, कृष्ण की लीला में भी वही लीला है और चैतन्य महाप्रभु निमाय के साथ भी ये लीला हुई, मतलब निमाय ने भी ये लीला किया। तो एक ब्राह्मण है वो आता है और ये ब्राह्मण का व्रत था कि स्वपाक भोजी था, स्वयं पकाकर ही भोजन करता था, मतलब स्वयं पकाकर भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करता था, किसी के हाथ का भोजन नहीं करता था। तो जब आया तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि आप हमारे घर पर रुकिए और कुछ दिन रुक कर हम आपके लिए सब भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, आपको जो भी राइस और दाल और सब्जियाँ वगैरह चाहिए आप स्वयं पकाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो शाम का समय हो गया था, उसने भोजन पकाया और भगवान को वो बोलने लगा, प्रार्थना करने लगा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरव मन्मथाय जगजगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इस प्रकार से कृष्ण को पुकार कर कृष्ण को भोग लगाने लगा। तो उस समय निमाय नजदीक में खेल रहे थे और क्योंकि वो आँखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था तो निमाय आकर चावल रखा था उसमें से कुछ चावल लेकर खाने लगे। अक्सर भोजन आप सामने रखते हैं और छोटा बालक है तो अक्सर वो आकर खा लेगा, गांव में आपने देखा ही होगा कि तो उस प्रकार से बालक है, कुछ भी अगर खाने का दिखाई देता है तो उसको मुंह में रख लेता, पूछेगा नहीं आपको मैं इसको खाओ कि नहीं, अगर बहुत छोटी उम्र है तो। तो जैसे ब्राह्मण ने देखा कि ये तो भोग अभी भगवान को लग रहा है हा? तो वही तो इन्होंने खा लिया तो भगवान को कैसे भोग लगा सकते हैं, तो बहुत दुखी हो गया। फिर जगन्नाथ मिश्र आए और सची माता आए, उनको भी लगा कि ब्राह्मण का वे भोग है जूठा हो गया तो कैसे भगवान को भोग लगाएंगे, दुखी हो गया। तो कहा कि ठीक है शायद भगवान की इच्छा है कि आज मैं उपवास कर लूं। तो कहा नहीं नहीं, ब्राह्मण हमारे घर पर अगर भूखा जाए तो हमें अपराध लगेगा, तो आप दूसरी बार भोजन लगाइए बनाइए और हम व्यवस्था करेंगे, निमाय हैं दूसरी बार यहाँ आए नहीं। और फिर निमाय को लेकर ऐसी व्यवस्था की गई कि उनकी माता दूसरे घर में रहेगी ताकि पड़ोस में चली जाएगी तो निमा यहाँ आएगा नहीं और वापस। तो और कुछ समय बीता, एक आध घंटा और बीत गया होगा भोजन बनाने में वापस, क्योंकि वापस बर्तन धोने हैं, वापस चावल पकाना है। और वापस हो भगवान को प्रार्थना करने लगा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौरव मन्त्राय शक्तताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और पता नहीं अब निमाय तो खेल ही रहा था अपनी माँ के साथ और सब लोग वहाँ थे, पर भगवान ने इस प्रकार से माया रची कि किसी का ख्याल नहीं रहा कि निमाय कहाँ चला गया और आकर वो चावल खाने लगा। तो अब तो ब्राह्मण है जो जैसे चिल्लाने लगे, क्या हो गया आप लोग, बच्चे ने है हमारा भोग है जूठा कर दिया। और जैसे उसने शोर मचाया तो सब लोग दौड़ कर आए और देखा कि निमाय है वहाँ पर है और वो भोजन मतलब थोड़ा जूठा करके वहाँ से भाग रहा है। और फिर जगन्नाथ मिश्र ने तुरंत एक बोला कि एक लाठी लाओ, छड़ी लाओ, हाँ इसको जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक ये सुधरेगा नहीं, हाँ और ब्राह्मण के घर पर जन्म लिया है, ब्राह्मण का ही भोजन है जूठा कर रहा है तो ये तो संस्कार ठीक नहीं है, हाँ तो इसको मैं है दंड दूंगा। पर ब्राह्मण ने रोक दिया कि बालक है, बालक को क्या मतलब, उसको पता नहीं होता ना कि ये सिद्धांत है कि भगवान को झूठी वस्तु भोग नहीं लगाने हैं, तो उसको छोड़ दीजिए आप, शायद आज दो बार ऐसा हुआ, भगवान चाहते नहीं कि मैं भोजन करूं। और ठीक है अब बहुत देर हो गई, रात को 9-10 तो बज ही गए होंगे, तो ठीक है मैं फल और दूध ले लेता हूं। तो उसने मना कर दिया कि अब मैं भोजन नहीं बनाऊं। तो उस समय है महाप्रभु निमाय के बड़े भाई जिसका नाम था विश्वरूप, तो विश्वरूप आए और विश्वरूप है वो भी देखने में बहुत सुंदर थे, उन्होंने ब्राह्मण को पैर पकड़कर हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आप एक और बार प्रयास कीजिए भोजन बनाए। और वो इतने सुंदर थे और उनकी प्रार्थना को ठुकरा नहीं पाए, कहा ठीक है तुम कहते हो तो मैं एक और बार। पर इस बार जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि निमाय को हम कमरे में बंद कर देंगे, उनकी माँ को बोला कि आप कमरे में चले जाओ, बाहर से लॉक लगा देंगे, ताला होगा तो कोई संभावना नहीं है कि बच्चा बाहर आए, अन्यथा तो हो सकता है खेल खेल में सब लोग स्त्रियाँ भी अंदर अंदर बात करने में मशगूल हो जाए, भूल जाए कि बच्चा कहाँ खेल रहा है। तो ऐसा किया गया, उनको पड़ोस में लेकर चले गए जिस कमरे में उनकी माँ को रखा गया, सची माता, तो बाहर से उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया, लॉक लगा दिया गया। और ब्राह्मण ने भोजन बनाया, करीबन रात को 11-12 मध्य रात्रि का समय हो गया होगा, और वापस उसने प्रार्थना भगवान को की कि हे कृष्ण, हे दामोदर, हे ब्राह्मणों के पालक, आप आकर भोजन ग्रहण कीजिए। और निमाय वहाँ पर आकर खाने लगे। तो अब तो जब देखा तो पहले तो ऐसे चिल्लाने के लिए, जैसे चिल्लाने जा रहा था तब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उसको उस रूप का भी दर्शन हुआ कि कृष्ण रूप का भी उसमें दर्शन हुआ, और वो समझ गया कि ये वही है कि जिसको मैं भोग लगा रहा हूँ। तो भाव विभोर हो गया, मतलब वो चिल्लाने जा रहा था पर भगवान ने प्रकाश किया कि वो कृष्ण ही है जिनको भोग लगा रहे हैं। तो ब्राह्मण है इतना भाव विभोर हो गया, अब चिल्लाने का कोई अर्थ नहीं था ना, क्योंकि कृष्ण को तो ही भोजन उसको करवाना था, और कृष्ण स्वयं अगर आकर खा रहे हैं तो फिर क्यों फरियाद करे। तो उसने खीर बनाई थी, चावल बनाए थे, अब क्योंकि भगवान ने वो खा लिए थे तो प्रसाद हो गया, तो उस प्रसाद को खाने की जगह पर अपने ही शरीर पर लगाने लगा, रगड़ने लगा, क्योंकि कृष्ण ने जो भी खाया वो भी कृष्ण के समान हो गया। तो उसको खाने, मतलब भाव विभोर में वो ये भी सूझ नहीं रही कि ये भोजन मुझे खाना है, उसकी जगह पर वो अपने शरीर पर लगाने लगा, नाचने लगा, कूदने लगा। और निमाय वहाँ थे, और कुछ समय के बाद सब लोगों ने थोड़ा शोर देखा तो लोग आए दौड़कर, और देखा कि ब्राह्मण खुश है, नाच रहा है, कोई फरियाद नहीं है, तो सब खुश हो गए, ठीक है ब्राह्मण की इच्छा पूरी हो गई जो भी हुआ। पर ब्राह्मण ने, और भगवान ने उस समय पहले ही बोल दिया था कि किसी को बताना नहीं मैं कौन हूँ, तो सबको बताना चाहता था कि आपका जो ये बच्चा है निमय है वो नहीं। फिर याद आ गया कि नहीं, भगवान ने मना कर दिया कि वो सबको उत्साही था कि यही भगवान स्वयं है जिनको आप अपना पुत्र मानते हैं। उसको सीक्रेट पता चल गया था। तो कुछ दिनों के लिए वो उस गांव में रहा और हर रोज निमाय की लीलाओं का दर्शन करता था। तो ये एक और बाल्य लीला है कि बचपन में गांव में पहले प्रथा थी कि बच्चों को काफ़ी आभूषण पहनाते थे, अभी तो चला गया सब, तो सोने के आभूषण या चांदी, सोने चांदी के काफ़ी आभूषण हाथ में, पैर में, कान में, गले में। तो निमाय को भी, ब्राह्मण थे हालांकि जगन्नाथ मिश्र इतने धनवान नहीं थे, पर फिर भी ब्राह्मणों को जो भी दान में मिलता है तो वो आभूषण बच्चों को पहनाते थे। तो निमाय हैं काफ़ी सारे आभूषण पहनकर अपने प्रांगण में खेल रहे थे। पहले गांव में ऐसे घर तो ऐसे नहीं होते थे, खुला ही होता है प्रांगण। तो वहां से दो चोर जा रहे थे, उसने देखा कि इस बच्चे के ऊपर बहुत सारे आभूषण हैं, इसका अपहरण कर ले तो काफ़ी सारा माल मिल जाएगा। अब इसके घर के सामने तो लूट नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि हम निकालने जाए तो रोने लगे बच्चा और अंदर से घर से लोग आ जाएंगे। तो कुछ रसगुल्ला ले आए, बंगाल में तो रसगुल्ला सब जगह मिलता है, और बच्चे को कहा कि हमारे साथ चलो तो तुम्हें रसगुल्ला और संदेश इत्यादि मिठाइयाँ खिलाएंगे। तो बच्चा कहा ठीक है, तो बच्चे को कंधे पर उन्होंने बिठा दिया। अक्सर गांव में आपने देखा होगा बच्चे को माँ पिताजी है कंधे के ऊपर बिठा रहे हैं, तो बच्चे को भी क्योंकि छोटा होता है तो उसको ऊपर बिठा दे तो उसको सब दिखाई देता तो अच्छा लगता है। आपको याद होगा, पता नहीं, मुझे तो मेरे पिताजी बिठाते थे। तो ये चोर है, अब कोई भी गांव में तो क्या है कि कोई भी आकर बच्चे को के साथ खेल सकता है, तो कोई विरोध नहीं करेगा। तो इसीलिए पहले उन्होंने नाटक किया कि हम बच्चे को ऐसे घुमा रहे हैं, तो ऐसे घुमाते घुमाते थोड़ा थोड़ा दूर होकर फिर आगे जाकर दौड़ने लगे। जैसे उसका घर से दूर चले गए तो फिर दौड़ने लगे ताकि घर से थोड़ा दूर चले जाए ताकि उसके आभूषण निकाल कर फिर बच्चे को छोड़ दें। तो काफ़ी दौड़े, उसके बाद उनको लगा कि अब ठीक है, अब काफ़ी हम दूर निकल कर आ गए हैं, और भी बच्चे को रखा और आभूषण निकालने वाले थे। तो वहाँ देखा कि लोग हैं निमाय निमाय इस प्रकार से ढूंढ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने आजू बाजू देखा तो कहा, पता चला कि वो तो वही जगह पर दौड़कर वापस उसी जगह पर आ गए हैं। ऐसे ही आप यहाँ से निकलो, दौड़ कर वो हम घूम घूम कर आओ, आपको लगे कि आप कहाँ बहुत दूर चले गए और वापस इसी जगह पर आ सकते हैं। तो चोर है इतने भ्रमित हो गए कि वो दौड़कर काफी जगह गांव में घूमकर नीमाई के घर पर वापस आ गए। और जैसे उन्होंने नीचे रखा, तो क्योंकि इतना समय बीत गया तो सब लोग घर पर ढूंढ रहे थे नीमाई को, तो उन्होंने नीमाई, तो सब लोगों को लगा कि ये लोग इनको ढूंढ कर वापस ले आए हैं। तो उनका आभार माना कि ठीक है, बहुत अच्छा आपने नीमाई को ढूंढ कर वापस ले आए, ठीक है आपके लिए कुछ हम लेकर आते हैं। पर चोर डरे हुए थे, इसीलिए उसको छोड़कर चले गए। तो जब लोग आए कि चलो इनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, तो वहां से पलायन करके। तो इस प्रकार से नीमा है जो भक्त थे या भक्त थे, दोनों को उनकी दिव्य लीलाओं का आनंद का मौका, मतलब उसमें भाग लेने का मौका दिया। जैसे यहाँ ब्राह्मण है, वो भगवान का भक्त ही था, पर ये चोर है भक्त नहीं थे, फिर भी भगवान की लीला जब होते इस धराधाम में भगवान प्रकट होते हैं, तो इस संसार के जीवों को उनकी दिव्य लीलाओं का मौका मिलता है देखने का, सुनने का, विशेष रूप से देखने का तो कई जीवों को भी मौका मिलता है। फिर महाप्रभु के कई लीलाएं हैं बचपन की जो उनके पढ़ाई के संबंधित है, और भी अनेक लीलाएं हैं, बाल्य लीलाएं, जैसे ये कि जब कृष्ण अभी नीमाय बहुत छोटे थे, तो एक दिन नीमाय सो रहे थे और जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि नूपुर की आवाज आ रही है, जैसे एक बालक चलता है तो उसके अगर पैर में नूपुर लगाए हैं तो उसकी आवाज आती है। तो उनको लगा कि नीमाय तो यहाँ है नहीं, कोई बालक तो चल नहीं, यहाँ कैसे आवाज आ रही है। और फिर देखा तो वहां पर कुमकुम के चरण चिन्ह भी घर में थे, तो उनको लगा कि आज है शायद हमारे जो शालिग्राम है, दामोदर शिला है, तो वो स्वयं है हमारे घर में बालक बनकर चल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण है, शालिग्राम की पूजा करते थे सब लोग, तो उनके घर में भगवान की शिला शालिग्राम के रूप में थी। तो उनको लगा कि शायद हमारे शालिग्राम है चल रहे हैं। पर नीमाय है उस समय भी जब वो बहुत छोटे थे तो भी वो घर में अक्सर इस प्रकार से चलते थे। और फिर उन्होंने कहा कि आज इसीलिए हम उत्सव मनाएंगे, और उस दिन है उन्होंने खीर बनाई, पकवान बनाए और सबको बांटा। और कई लीलाएं हैं कि एकादशी से संबंधित एक लीला है, दो भक्त थे जिन्होंने एकादशी के दिन भगवान के लिए विशेष भोग बनाया था। एकादशी के दिन हम लोग हैं अनाज नहीं खाते, अन्न नहीं खाते, पर दो भक्त थे कि जिन्होंने दूसरे गांव में भगवान के लिए फिस्ट बनाए थे। तो नीमाय अपने पिताजी को बोलता है कि मुझे वो उनके घर से कुछ भोजन खाना है। तो पहले तो एक बालक को कैसे पता होता हो सकता है कि किसी और ने अपने घर पर क्या बनाया। फिर वो उनके घर पर गए और पता चला कि उनके घर पर वाकई में भगवान के लिए फिस्ट प्रसाद बनाया गया है। तो इस प्रकार से भगवान है अपने अचिंत्य शक्तियों को अपने बाल्य लीलाओं में प्रकट करते हैं, पर उनके जो भक्त है उनकी भक्ति की इतना उच्च स्तर होता है कि वो उनको देखते भी है उन लीलाओं को, पर क्योंकि वो अपने पुत्र के रूप में ही उनको स्नेह करते हैं, तो उनके लिए ये स्वीकार करना नहीं संभव हो पाता है कि मेरा पुत्र ये कर रहा है। जैसे कृष्ण है बहुत सारे असुरों का वध किए, पर यशोदा मैया और नंद बाबा ये मानते हैं कि कृष्ण कैसे वध कर सकते, वो तो छोटे बालक है, इनका तो हमें रक्षा करना चाहिए, ये डर जाएंगे, इनका हमें पालन करना चाहिए, उनको भोजन करवाना चाहिए। तो ये भक्ति के दो रस है, वहाँ एक जगह भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं जैसे असुरों को माना, पर साथ में वात्सल्य रस भी है। तो वात्सल्य रस में जो भक्त है वो ऐश्वर्य प्रकट होता है, फिर भी ऐश्वर्य को देखकर अचंभित या आश्चर्यचकित नहीं होता है, और अपने पुत्र के रूप में ही उनका भाव है बना रहता है। उनकी काफ़ी सारी पढ़ाई के संबंधित बहुत सारी लीलाएं हैं। महाप्रभु है बाल्यावस्था में गंगादास पंडित है उनके वहाँ पर है, उनकी पाठशाला में पढ़ाई करने जाते थे। पहले भारत में हर गांव में बहुत सारी पाठशालाएं होती थी जहाँ पर छोटे बालक है पढ़ने जाते थे। एक तो बड़े गुरुकुल भी होते थे जहाँ पर कुछ अवस्था के बाद लोग ज़्यादा हायर स्टडी के लिए जाते थे। उससे पहले तो दूर मतलब गांव के बाहर थोड़े से नज़दीक में गांव के बाहर या नगर के बाहर गुरुकुल हुआ करते थे और फिर गुरुकुल में बच्चे रहते थे और भिक्षा इत्यादि के लिए भिक्षाटन के लिए गाँव में या नगर में आते थे। भोजन गुरुकुल में नहीं बनता था, सब भिक्षा में जो मिलता था वही सब लोग भोजन करते थे। और दूसरी पाठशालाएँ हुआ करती थी। अब बालक एकदम छोटे हैं तो पाठशालाओं में भी पढ़ते थे। ये 500 साल पहले की बात है कि उस समय ऐसे गुरुकुल कम हुआ करते थे। हो सकता तक्षशिला या नालंदा ऐसे बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे कि जहाँ पर दूर से भी लोग आकर पढ़ते थे, पर वो उसमें उम्र बच्चों की उम्र ज़्यादा होगी। तो पाठशालाएँ में नज़दीक में ब्राह्मण होते थे, अपने घर पर बच्चों को 10-15 बच्चे आते थे, उनको पढ़ाते थे और फिर वो बच्चे अपने घर पर वापस चले जाते थे। तो गंगादास पंडित हैं जो सांदीपनि मुनि ही स्वयं हैं, तो उनकी पाठशाला में निमाय पढ़ते थे और बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। और बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको आपस में एक दूसरे को कितना ज्ञान है उसकी काफ़ी स्पर्धाएँ होती हैं। वो एक दूसरे को पूछते भी हैं, प्रश्न भी पूछते हैं कि तुम्हें कितना आता है, तुम्हारे टीचर ने कितना सिखाया, मुझे तुम्हारे से ज़्यादा आता है, तुम्हारे शिक्षक है हमारे शिक्षक से बेहतर, मेरा शिक्षक है तुम्हारे शिक्षक से बेहतर है, हमारे गुरु जी हैं तुम्हारे गुरु जी से ज़्यादा ज्ञानी हैं। बच वहाँ तो गांव में और अभी भी अब कोचिंग क्लासेस हो गए हैं आप भौतिक शिक्षा के लिए। तो यहाँ तो मुख्य रूप से जो पढ़ाई होती थी संस्कृत, क्योंकि एक बार संस्कृत का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया तो उसके बाद आपको कोई भी विषय, आपको आयुर्वेद पढ़ना है, आपको ज्योतिष पढ़ना है, आपको वास्तु पढ़ना है, आपको पुराण उपनिषद वेद या यज्ञ इत्यादि जो भी भौतिक विज्ञान भी के विषय भी जो है धनुर्वेद इत्यादि आयुर्वेद इत्यादि स्थापत्य इत्यादि सब संस्कृत में थे, उसके ग्रंथ भी सब संस्कृत में हैं और थे। तो इसलिए पहले संस्कृत पढ़ाया जाता था उस, और बच्चे कुछ सालों में 2-3 साल में काफ़ी अच्छा संस्कृत सीख लेते थे कि ताकि कोई भी फिर ग्रंथ वो अध्ययन कर सके। तो ये दिन में मतलब कुछ घंटे पढ़ते थे और फिर गंगा में जाकर स्नान करते थे और फिर घर पर वापस लौटते थे या घर पर वापस लौट कर आते थे और फिर गंगा में जाकर नहाने जाते हैं। अभी भी आप जाएंगे मायापुर में तो लोग हर रोज गंगा में स्नान करने दोपहर के बाद जाते हैं, सुबह भी कई लोग जाते हैं, कई लोग दोपहर के बाद जाते हैं। तो निमाय भी ऐसा करते थे और उस गंगा पर बहुत सारे बच्चे के साथ वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए आते थे। मैंने बताया था कि उस समय नदिया है वो ब्राह्मणों का एक बड़ा मतलब गढ़ था कि जहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से वहाँ पर न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए आते थे। अभी क्या हो गया कि मायापुर छोटा गाँव हो गया और सामने जो है नदिया वो बड़ा टाउन हो गया, तो पहले अधिकतर लोग इसी और इस साइड में रहते थे जहाँ मायापुर है। फिर नदी का प्रवाह बदला तो लोग हैं शिफ्ट हो गए उस साइड में और फिर वापस प्रवाह बदला तो ये मायापुर वापस प्रकट हुआ। बीच में कुछ समय के लिए वो पानी में भी डूब गया था। तो वहाँ पर निमाय बहुत सारी शरारतें करते थे, जैसे ब्राह्मण हैं गायत्री करने के लिए नदी में उतरे हुए हैं तो डुबकी लगा कर जाते थे और उनका पैर खींच लेते थे। अब जैसे मगरमच्छ आप पानी में गए तो मगरमच्छ आएगा और घड़ियाल या क्रोकोडाइल तो आपका पैर खींचेगा, ऐसा हो सकता है जैसे वो द्रोणाचार्य के साथ हुआ और अर्जुन ने उनको बचाया था। तो ब्राह्मण काफ़ी डर जाते थे कि कैसे कोई प्राणी आ गया और वो गिर जाते थे, या उन्होंने वस्त्र रखे होते थे अपने तो अलग अलग घाट हुआ था, कहते कुछ घाट पर स्त्रियां स्नान करती थी, कुछ घाट पर ब्राह्मण मतलब पुरुष स्नान करते थे। तो बच्चे क्या करते थे, निमाय और उनके मित्र उनके वस्त्र है मिश्रित कर देते थे, स्त्रियों के वस्त्र है पुरुषों की साइड में, पुरुषों के वस्त्र स्त्रियों के साइड में। तो ये लोग जब बाहर निकलते थे धोती की जगह पर उनको साड़ी मिलती थी या कभी वहां पर गौरी व्रत के लिए लड़की आती थी, छोटी छोटी कन्याएं बालिकाएं। आपको पता है कि बारिश के समय आते तब गौरी व्रत करते हैं अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए, शिव की उपासना बालिकाएं करती हैं। तो वो अपने मतलब कुछ मिठाई फल और पुष्प इत्यादि लेकर नदी किनारे आती थी, शिवलिंग बनाती थी, पूजा करती थी, पर निमाय उनको रोक देते थे रास्ते में कि कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि शिव जी की पूजा करने के लिए गौरी व्रत करने के लिए। कहा कि पूजा है सब मुझे अर्पण कर दो, मुझे अर्पण नहीं करोगे तो तुम्हें बूढ़ा सा पति मिलेगा जिनके और पहले से चार पत्नियां होगे, उस समय बहुपत्नी तो भी था, और अगर मुझे अर्पण करोगे तो तुम्हें सुंदर सुशील नवयुवक पति मिलेगा। हाँ, तो लड़कियां कभी कभी तो डर जाती थी कि हो सकता है ब्राह्मण है उसका शाप लग जाएगा हमें तो उसको दे, पर कुछ नहीं देते थे, तो फिर नहीं मैं उसको शाप दे देती हूँ तुम बूढ़ा पति मिलेगा। हाँ, या उनको कहते थे कि तुम जिस शिव की पूजा कर रहे हो तो मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ अर्पण कर दो। हाँ, तो सब लोग नहीं नहीं अब ब्राह्मण है तो लोग डरते भी थे कि ब्राह्मणों का अपराध ना हो जाए। तो निमाय के ऐसी बहुत सारी शरारत के कारण कई ब्राह्मण है अब उनके घर पर फरियाद लेकर आने का विचार करते थे। तो एक दिन ब्राह्मणों ने विचार किया, उन्होंने ये शरारतें की तो कुछ ब्राह्मण है, तो निमाय को पहले से पता चल गया कि आज ब्राह्मण लोग है मेरे घर पर फरियाद करने वाले के ले जाएंगे। तो निमाय उस दिन स्नान न करके सीधा घर चले गए, पाठशाला से सीधा घर पहुंच गए और अपने हाथ पर इंक लगा दी, पहले तो इंक वाली पेन से लिखते थे तो शाही लगा दी और वही और घर पर आकर पढ़ाई करने लगे। तो जब ब्राह्मण फरियाद करने आया आपका बेटा आकर हम सबको परेशान करता है, देखा तो निमाय तो घर से बाहर निकला और कहा कि मैं तो अभी इसी पाठशाला से आ रहा हूँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ पढ़ाई करता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, एक और फरियाद कर रहे हैं, एक बच्चा अंदर है। तो इस प्रकार से कृष्णा जैसे इस प्रकार से मक्खन चोरी करके सबको परेशान करते थे और सब कई गोपियां कृष्णा को पकड़ कर आती थी फरियाद करने के लिए, कृष्ण को हाथ में लेकर आती थी और जब नंद बाबा के घर पर पहुंचती थी तो कृष्ण की जगह पर उसका ही लड़का होता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ब्राह्मण है कि जिनके साथ भगवान ने ऐसी बहुत सारी लीलाएं की, ये सभी लोग हैं कृष्ण लीला में भी हैं, जो भी कई लोग हैं यहाँ पर चैतन्य लीला में हो कृष्ण लीला में भी है। निमाई की कुछ पढ़ाई के बाद उनके बड़े भाई जो है विश्वरूप है श्रीवास ठाकुर के अद्वित आचार्य के घर पर हर रोज सत्संग होता था, सब भक्त है, अभी चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ नहीं किया था, तो कुछ भक्त वहाँ पर थे मायापुर में, अद्वित आचार्य श्रीवास ठाकुर और गदाधर इत्यादि कुछ जहाँ जो भक्त थे वो अद्वित आचार्य के घर पर हर रोज सत्संग के लिए इकट्ठे होते थे। तो विश्वरूप भी वहाँ पर जाया करता था और कभी कभी निमाय अपने बड़े भाई को भोजन के लिए, समय हो गया भोजन के लिए तो माँ बोलती थी अपने भाई को बुला कर ले आओ, तो वो उसको बुलाने जाते थे। तो सब ब्राह्मण वहाँ जो भी भक्त थे वो उनसे आकर्षित होते थे और सबको ये मन में समझ में नहीं आता था कि इस बालक के प्रति हमारा क्यों विशेष प्रेम हृदय में जाग रहा है, पर वो समझ नहीं पाते थे। तो विश्वरूप ने जब देखा कि इस संसार में सभी लोग हैं भक्ति में कोई किसी को रुचि नहीं है, तो मैं क्यों इस संसार में सब उलझनों में पड़ूं, मैं संन्यास ले लेता, तो उन्होंने काफ़ी युवा अवस्था में संन्यास ले लिया। तो उससे उनके पिताजी को काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर निमाय भी पढ़ाई करेगा तो वो भी संन्यास ले लेगा, क्योंकि पहले मुख्य रूप से पढ़ाई मतलब संस्कृत पढ़ते थे, फिर वेद उपनिषद इत्यादि भगवद्गीता इत्यादि पढ़ेंगे, तो शास्त्र पढ़ेंगे तो वैराग्य आएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो इसलिए शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए। भारत में भी जब शिक्षा आधुनिक शिक्षा पद्धति आई तो उन्होंने शास्त्रों की पढ़ाई बंद कर दिया, क्योंकि भौतिकवाद को आगे बढ़ाना है तो शास्त्रों को बाजू में रखेंगे तभी भौतिकवाद आगे बढ़ेगा। अभी भी अगर सिलेबस में भगवद्गीता आ जाएगी, अगर मूल रूप से पढ़ाया जाएगा, तो बहुत सारे लोग समझेंगे कि जीवन किस लिए है, किस लिए मनुष्य जीवन है। और एक तो जो काफ़ी सारे लोग ऑनेस्ट हो जाएंगे, प्रमाणित हो जाएंगे, काफ़ी सारे लोग ये भी समझ पाएंगे कि हमारे जो लीडर्स हैं हमें कैसे मिसलीड कर रहे हैं। इसीलिए एक प्रकार से जो समाज के नेता है लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं, कैसे वो एक प्रकार से धोखेबाजी है और लोगों को सिर्फ गलत बयान गलत वचन देते हैं। अब जैसे इलेक्शन आ रहा है तो हर नेता है बहुत सारी प्रॉमिस देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हाँ, और सब लोग जानते हैं, पर लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, अब मान लीजिए आप एक पार्टी को वोट दो या दूसरी को दो या नोट आ दबाओ, हाँ नन ऑफ अबो आप करेंगे तो भी कोई ना कोई तो चुना जाएगा। हाँ तो या लोग कई लोग उनकी पार्टी में भी जुड़ी हुई हैं, तो शास्त्रों के ज्ञान से चाहे राजा कैसा भी हो लोग अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर जा सकते थे। इसलिए अंग्रेज आए पर लोगों के जीवन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि लोग शास्त्रों को तो पढ़ते ही थे। तो भले अंग्रेज हैं वो शासन कर रहे हैं, टैक्स ठीक से टैक्स उनको दे दो, पर हमारा जीवन हमारे पास है, उसको किस दिशा में ले जाना है लोग जानते थे। तो मुख्य रूप से जगन्नाथ मिश्र को तो ये हुआ कि इसीलिए पढ़ाई नहीं करना है, तो निमाय को बोल दे कल से पाठशाला नहीं जाना है। तो निमाय की मस्ती और ज़्यादा बढ़ गई, अब पालक है पूरे दिन घर रहेगा तो क्या करेगा। हाँ तो कभी कभी अब तो टोली बना दी उन्होंने, हाँ आजू बाजू घर में बच्चे किसी के सो रहे उसको जाकर चिमटा करके आ जाते थे, या किसी के घर में मलमूत्र त्याग करके आ जाते थे, या अगर उन्होंने घर में कुछ खाने का रखा हुआ है तो उसको चुरा कर उसको अगर नहीं मिलता था जिनके घर में कुछ तो उनके बर्तन तोड़ देते थे। उस समय बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन होते थे। तो उस प्रकार से बहुत सारी परेशानियाँ वो सबको परेशान करने लगे। और एक दिन निमाय जहाँ पर जो टूटे हुए फटे हुए टूटे फूटे मटके जो है फेंके जाते हैं खाना जो रसोई के लिए प्रयोग होते हैं, काले हो जाते हैं मटके और फिर टूट जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं, तो ऐसा ढेर बन जाता है सब लोग एक ही जगह फेंकते हैं, तो उसके ऊपर जाकर खेलने लगे। तो सची माता आकर बोले कि तुम तो ब्राह्मण के पुत्र हो गंदी जगह पर क्यों खेल रहे हो। हाँ तो ये अशुद्ध है। हाँ तो कहा कि मुझे कैसे पता चला कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, आप लोग मुझे पढ़ाई के लिए भेजते नहीं तो मुझे तो कोई ज्ञान नहीं होगा। तो उनकी माँ को लगा कि अगर ये पढ़ेगा नहीं तो पता नहीं तो मूर्ख बना बन जाए मूर्ख ही बना रहेगा। तो उन्होंने जाकर जगन्नाथ मिश्र को कहा कि हमें अपने बेटे को पढ़ाना चाहे। फिर अड़ोस पड़ोस वाले भी लोग आए, कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़े, पर वो पढ़ना चाहता नहीं, आपका बेटा पढ़ना चाहता है तो आप उनको पढ़ने के लिए भेजते क्यों नहीं है। और ऐसा नहीं है जगन्नाथ मिश्र आप ही आपने आप भी बहुत बड़े विद्वान हैं तो आपने कहाँ संन्यास ले लिया। ऐसा नहीं कि सब लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो सब संन्यास लेते हैं। हाँ एक कोई एक हो सकता है हजार में से कोई एक व्यक्ति, पर अधिकतर तो ब्राह्मण भी आप देखें नवद्वीप में भी अधिकतर ब्राह्मण सब गृहस्थ थे तो सब विद्वान भी थे। तो शास्त्र है वो हमें विशेष रूप से अपनी जवाबदारियों से भागने का नहीं सिखाते हैं, पर अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन देते हैं। तो इसीलिए शास्त्र पढ़ने में कोई हानि नहीं है। हाँ और फिर जगन्नाथ मिश्र हैं उनको वापस है पाठशाला में प्रवेश के लिए अनुमति दे देते हैं। और क्योंकि उनके पुत्र का संन्यास हो गया तो वो हमेशा दुखी तो रहते ही थे, तो इसीलिए निमाय छोटे थे तभी जगन्नाथ मिश्र ने भी शरीर का त्याग किया और वो भगवत धाम में वापस भगवान की लीलाओं में चले गए। और फिर निमाय उनके पिताजी के देहांत के बाद थोड़े शरारत उन्होंने कम कर दिया और वो एक धीरे धीरे कुछ 12 या 14 साल के हुए होंगे या उसी समय में, तो काफ़ी अच्छे पंडित के रूप में उनका नाम प्रसिद्ध हो गया निमाय पंडित। इस नाम से वो नदिया में प्रसिद्ध युवक ही थे पर और अक्सर वो सब के साथ वाद किया करते थे, सबको प्रश्न पूछते थे कि बताओ ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये जस्ट में आधुनिक आपको आपको जैसे आप लोग स्कूल में पढ़े आपको वो नहीं है सब बताते थे। तो कोई कहेगा कि भाई बताओ कि तुम ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, फिर आप कहेंगे आप कुछ बताएंगे कहने नहीं ये गलत है आइंस्टाइन भी गलत है, और वो कहेगा कि ऐसा नहीं होता है। तो आप अगर कोई स्कॉलर है तो आपको प्रूव कर देगा डिसप्रूव कर देगा कि ये नहीं होता है। तो उसी प्रकार से निमाय उनको पूछते थे कि व्याकरण के कुछ बातें बताते थे कि इस बात को बताओ। हाँ कि तो वो लोग बताते थे कहा कि तुमने जो बताया वो सब गलत है, फिर वो अपना पक्ष रखते थे तो सब लोग कन्विंस हो जाते थे। कुछ समय के बाद कहते थे मेरा पक्ष भी गलत है तुम्हारा पक्ष ही सही है, फिर वो वापस उसका एक्सप्लेनेशन देते थे। तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि वो पहले अपनी बात रखते थे उसको भी साबित कर देते थे और फिर उसको भी डिसप्रूव कर देते थे, मतलब विद्वान का मतलब यही है कि गलत वस्तु को भी वो सही साबित कर देना और सही वस्तु को गलत साबित कर देना, तो इतने काफी बड़े पंडित के रूप में प्रसिद्ध हुई। एक लीला है, मेरे ख्याल से लास्ट पास्ट टाइम हम लेते हैं कि और है समय। ओके, तो एक प्रसिद्ध बहुत बड़ी लीला है कि एक पंडित थे दिग्विजय पंडित, तो केशव काश्मीरी। तो ये जो दिग्विजय पंडित है वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे और कई जगह पर वो उन्होंने सब पंडितों से वाद किया था। उस समय ये प्रथा थी कि आप अगर पंडित हैं तो आपको अपना नाम कमाना है तो आपको दूसरे पंडितों को शास्त्रार्थ में परास्त करना पड़ेगा। और ये सब पंडित थे, बहुत मल्टी टैलेंटेड रहते थे, मतलब कई विषयों में उनका मतलब चाहे ज्योतिष ले लो या वेद ले लो, उपनिषद ले लो, न्याय ले लो, कई शास्त्रों में वो माहिर होते थे क्योंकि बचपन से यही ट्रेनिंग होते थे। तो उसने भारत में काफ़ी सारे पंडितों को हराया था और सबसे सर्टिफिकेट भी लिया था कि आई वॉज डिफीटेड बाय, ओके हम इनसे हार गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे पंडितों के सर्टिफिकेट वो लेकर आया था और उसको पता था कि ये जो नदिया है वहाँ न्याय के जो पंडित है वो भारत भर में प्रसिद्ध है, वहाँ के न्याय के पंडित को मैं परास्त कर देता हूँ। न्याय मतलब तर्कशास्त्र, साइंस ऑफ लॉजिक, एक आधुनिक भी है और ट्रेडिशनल भी है। तो षड्दर्शन में एक है न्याय, तो इसलिए मैं यहाँ जाकर कोई पंडितों को हरा देता हूँ तो मेरा नाम वाकई में दिग्विजय हो जाएगा। तो वो वहाँ आया और यहाँ के जो ब्राह्मण है वो थोड़े डरे हुए थे कि अगर हम हार जाएंगे तो पूरा नदिया जो है उसका नाम मिट्टी में मिल जाएगा, लोग फिर हमारा लोग है पता चल, लोगों को पता चल जाएगा कि भाई फर्स्ट क्लास नहीं है, सेकंड क्लास है, ये लोग हारे हुए हैं, तो क्या करें हम। तो ऐसा विचार करके कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हम ये नीमाए पंडित को भेजते हैं उनके सामने, अगर नीमाए उसके सामने हार जाता है, जीत जाता है मान लीजिए, तो हम कहेंगे कि जाओ एक हमारे गांव के एक लड़के ने आपको हरा दिया तो हम तो उनके गुरु जी। तो और जीत जाएगा तो हम कहेंगे तो गांव का एक लड़का था, बालक था, उसको हरा दिया। और ये तो एक आध डिबेट होती है, ऐसा नहीं कि सबके साथ वो डिबेट करेगा, एक को हरा कर वो तो आगे चला जाएगा, नीमाए पंडित को हरा दिया था मैंने, सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा। तो ऐसा विचार करके मतलब सब विचार चल रहा था ब्राह्मणों के बीच में। और दिग्विजय पंडित है वो शाम को टहलने के लिए निकला अपने शिष्यों के साथ, क्योंकि जो भी ब्राह्मण होते थे उनके साथ बहुत सारे बालक युवक रहते थे जो उनसे सीखते थे। तो अक्सर गुरु जी के साथ शिष्य हमेशा साथ में रहते थे क्योंकि पढ़ाई हमेशा ऐसा नहीं थी वर्ग में होती थी, वो जब भी इस समय मौका आता था गुरु जी बताते रहते थे। और जैसे प्रभुपाद भी क्लास के अलावा भी बहुत सारी शिक्षाएं मॉर्निंग वॉक के दरमियान और वार्तालाप के दौरान दिए हैं, और खास करके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है प्रभुपाद की पत्रों के द्वारा और वार्तालाप के द्वारा है। तो दिग्विजय पंडित अपने शिष्यों के साथ घूमने के लिए निकला और नीमाए पंडित भी अपने कुछ शिष्यों के साथ मतलब उनके जो विद्यार्थी थे उनके साथ वहाँ टहल रहे थे और गंगा के किनारे दोनों आमने सामने आ गए। और इन लोगों ने भी बता दिया कि इनके विद्यार्थी ने बता दिया कि यही वो दिग्विजय पंडित है, और दिग्विजय पंडित को भी उनके शिष्य ने बता दिया कि ये वही नीमाए पंडित है जिनको कई लोग मानते हैं। तो प्रणाम किया, एक दूसरे का अभिवादन किया और नीमाए पंडित कहें कि आप तो बहुत बड़े विद्वान कवि हैं हमने सुना है, तो गंगा माता हमारे नज़दीक ही है तो माता की स्तुति आप कीजिए। हाँ, अब कवियों को अगर बोला जाए कि भाई आप किसी की स्तुति करें तो ऐसा नहीं कि उसको किसी के गीत गाए हुए गाना है, उसको अपने काव्य बनाकर गाना होगा। यही मतलब कवि है तो वो अपने गीत बनाकर गाता है, हाँ बाकी सब लोग उसकी कॉपी करते हैं, जैसे सब लोग है गीत सुनते हैं ना बॉलीवुड के, किसी को गीत नहीं आता है, अब कोई कवि होगा तो अपने ही गीत बनाएगा। हाँ, तो दिग्विजय पंडित ने केशव काश्मीरी ने 100 श्लोकों में वो क्या कि आशु कवि उसको कहते हैं, कि जल्दी जो आशुकवित्व कि मतलब आप उसको कोई भी विषय देंगे तो तुरंत उसके ऊपर वो संस्कृत में काव्य बना सकता है, अलग अलग छंद में। अभी भी भारत में है कुछ लोग कि जो ऐसे कवि है कि आप उनको बोले कि यहाँ बेस पर आए और आप कहें कि बेस के बारे में आप कुछ काव्य बताइए, कुछ श्लोक बता दीजिए, तो तुरंत आपको श्लोक उसकी रचना करके इसके जो भी वो देखेंगे उसके अनुसार वो बनाकर आपको प्रस्तुत कर देंगे। उसके लिए काफ़ी विद्वता चाहे, शब्दकोश का ज्ञान और विभिन्न रसों का ज्ञान, काफ़ी सारा ज्ञान चाहे उसके लिए। तो दिग्विजय पंडित है, उसने 100 श्लोकों में गंगा माता की स्तुति की, नहीं अपने बनाए हुए। तो सब जितने भी ब्राह्मण थे वो अचंभित हो गए वहां पर, जब जो भी शिष्य थे सब, क्या मतलब विद्वता है। तो निमय पंडित ने भी कहा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपके श्लोकों में क्या क्या गुण है ऐसा करके बताया, भाई ये फलाने श्लोक में आपने ये गंगा माता को इस प्रकार से संबोधित किया, इस प्रकार की उनकी स्थिति की, इस प्रकार से उनकी महिमा की। तो निमय ये जो दिग्विजय पंडित है उनको भी आश्चर्य हो रहा था कि निमय पंडित ने, मैं तो 100 श्लोक बोल दिए पर उसने कैसे मेरे श्लोकों को याद रखकर उसमें क्या क्या मैंने बातें बताई वो भी बता रहा। तो वो आश्चर्यचकित थे। पहले तो उन्होंने गुण बताए कि ये गुण आपके ऐसे अलंकार का प्रयोग किया गया है, ऐसे छंदों का प्रयोग किया गया है। तो भाषा में बहुत वैविध्यता ऑर्नामेंट्स होते हैं अगर काव्यों में। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ कमियां भी हैं, आपके प्रोफेसर कॉलेज के सबसे हेड, उनके नीचे बहुत सारे लोग पीएचडी भी कर चुके हैं, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं या जो भी आपके सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाने के बाद आप जाकर बोले कि टीचर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया पर कुछ गलतियां भी की हैं। पहले तो कहें कि तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले, हैं तुम्हारी क्या हैसियत है, अभी तो तुम्हारी 2 एटिकेटी आई हैं और मुझे सिखा रहे हो। तो पंडित जो ज्ञानी हैं उनको बहुत अहंकार होता है, इसलिए ज्ञानियों को अगर आप जब तक उनकी स्तुति करेंगे ना तब तक वो खुश रहेंगे, पर जैसे आपने बोला कि कमी है, अब कोई वैज्ञानिक है या किसी को बोल दो ज्ञानियों को, जैसे बीच में हुआ था ना कि डार्विन की थियोरी के ऊपर भारत के मंत्री ने बताया था कि वो ठीक नहीं है, तो भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक है मतलब 1 हफ्ते तक तो उसके ऊपर फिर उन्होंने सेमिनार आयोजन किया, डार्विन वीक सेलिब्रेट किया कि नहीं हम लोग सही है। उसने एक स्टेटमेंट दिया उसको फिर डिफीट करने के लिए उन लोगों ने पूरा आंदोलन शुरू कर दिया। तो अहंकारी मतलब भक्ति युक्त ज्ञान नहीं है तो वो अहंकार पैदा करता है। भक्ति में तो हम ज्ञान सेवा से प्राप्त करते हैं, इसलिए अहंकार नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो दिग्विजय पंडित है वो, अब फिर निमय पंडित बताए कि आपने एक श्लोक नंबर 47 या 50 ऐसा नंबर बताकर बताया कि ये नंबर के श्लोक में आपने ये गलतियां की हैं, उसमें से 2-3 गलतियां यहाँ भी वर्णन है। एक गलती का वर्णन कहते हैं कि भवानी भर्तु आपने शब्द प्रयोग किया है। भवानी मतलब क्या होता है, भव की पत्नी, भव मतलब शिव, शिव की पत्नी जो है उसको भवानी कहते हैं, अपना जानते हैं भवानी शब्द, भर्तु मतलब पति, तो शिव जी की पत्नी के पति। तो ऐसा शब्द प्रयोग देखा था है कि उनके 2 पति हैं, शिव जी के पत्नी के पति। तो अगर एक स्त्री को 2 पति है तभी ऐसा शब्द प्रयोग ठीक रहेगा, अगर पति के पत्नी के पति तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें उनके 2 पुरुष के साथ संबंध दिखाए हैं। तो इस प्रकार से ये भाषा की दृष्टि से दोष है। फिर कुछ जगह पर उन्होंने पुनरावृत्ति भी बताई, सामान्य रूप से जैसे काव्यों में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए शब्दों की, जैसे कभी कभी भार देने के लिए होता है, जैसे हरेर नाम ही केवलम, तो बारंबार वही बात बताई, पर सामान्य रूप से आप देखेंगे तो काव्यों में इस प्रकार से पुनरावृत्ति नहीं होती है, वही बात 2-3 बार नहीं बोली जाती, उसी शब्दों को रिपीट नहीं किया जाता। तो ऐसे कई दोषों को उन्होंने बताया। तो दिग्विजय पंडित के पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, अब उसको वो जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, मिस्टेक तो उनको भी दिखाई दे रही थी, मिस्टेक है, तो उस सुप्त आप कहा ठीक है, फिर भी आपका कार्य बहुत अच्छा है, कल मिलते हैं। तो निमाय पंडित अपने मित्रों के साथ, जो भी शिष्यों के साथ चले गए, और ये जाकर भगवान रात को जाकर सरस्वती की आराधना की, प्रार्थना की कि ऐसा कैसे हो गया, आप हमेशा मेरे मुख पर, जीभ पर हमेशा बसती है और हमेशा प्रकट होती है। तो रात को उनको सपने में सरस्वती आया, कहा कि तुम आज बहुत भाग्यशाली हो, हाँ मेरे जो स्वामी हैं, सरस्वती ने कहा कि कृष्ण हैं मेरे स्वामी हैं और आज तुम उनसे परास्त हुए हो, हाँ तो तुम्हें खुश होना चाहे, और इसीलिए मैं स्वामी के सामने कैसा अपना, जैसे कोई पत्नी है वो स्वामी अपने पति के सामने भी थोड़ा है उनका मान रखती है, तो उस प्रकार से मैंने उनका मान रखा और इसीलिए तुम्हारे जीवा पर मैं प्रकट नहीं हुई और इसीलिए तुमने गलतियाँ की। हाँ विद्या है तो सरस्वती के कारण ही, कोई किसी के पास भी, हमारे पास अगर कोई टैलेंट भी है तो वो भगवान या जो देवता है उनके सेवक है उनकी कृपा से सब वस्तु लोग प्राप्त करते हैं, तो लोग भूल जाते हैं कि मेरे पास जो टैलेंट है, स्किल है, भगवान के कारण है, और फिर अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो इस लीला में चैतन्य महाप्रभु काफ़ी बातें हमें सिखा गए हैं कि विद्या का अहंकार इस प्रकार से व्यक्ति को अहंकारी बना देता है। तो दिग्विजय पंडित है, फिर दूसरे दिन जाकर निमय पंडित को प्रणाम किए और वो जान गए कि यही स्वयं भगवान है, और बाद में जाकर दिग्विजय पंडित भी स्वयं वैष्णव बन गए, भक्त बन गए। तो ऐसे महाप्रभु ने काफ़ी सारे पांडित्य की लीलाएँ की है, काफ़ी सारी बाल्य लीलाएँ की है। अब तक उन्होंने संकीर्तन का प्रारंभ नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर महाप्रभु अपने आविर्भाव में, क्योंकि आगे जाकर भी उनको काफ़ी सारे पंडितों के सामने, जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, ऐसे पंडितों के सामने या जगत के सामने ये बात भी रखनी थी कि पांडित्य से भी पढ़कर जो है वो भगवान नाम है, भक्ति की महिमा। तो अपनी बाल्य लीलाओं में उन्होंने, खास करके युवावस्थाओं की कुमारावस्था की लीलाओं में उन्होंने पांडित्य का प्रदर्शन किया, और फिर उन्होंने संकीर्तन किया, ताकि लोग ये नहीं समझे कि कीर्तन उन लोगों के लिए है कि जिनको कुछ ज्ञान नहीं है। हाँ कुछ बाद में जाकर चैतन्य महाप्रभु को एक्यूज की भी किए कि आप क्यों सन्यासी हैं और भावुक की तरह है एक कीर्तन नर्तन करते हैं। तब महाप्रभु ने कहा कि कलयुग में मूर्ख हूँ इसलिए मैं यही करता हूँ। पर सब लोग जानते थे कि निमय पंडित के रूप में वो काफ़ी प्रसिद्ध थे और दिग्विजय पंडित को भी उन्होंने परास्त किया था। तो एक जब पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति भी जब भगवान का नाम कीर्तन कर रहा है, नाच रहा है, तो उन्होंने तो उन विषयों को ठीक ठीक से समझा होगा तभी वो करेगा, ऐसा नहीं कि वो दूसरों को कहने में आ गया है और कर रहा है। हाँ तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भी अपने आंदोलन में, विशेष करके विश्व के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको प्रेरित किया, और कई पढ़े लिखे युवक लोग उसमें जुड़े, ताकि लोग समझे उसका महत्व समझे। और भारत देश में जो लोग की मान्यता थी कि जो वेस्ट पाश्चात्य देशों से जो आता है, हाँ एनीथिंग कमिंग फ्रॉम वेस्ट इज गुड एंड इट इज सुपीरियर, फर्स्ट क्लास है, जैसे वेस्ट से आया है तो यहाँ से अच्छा है, तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ से वहाँ अच्छी है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ से जो भी आएगा अच्छा है, तो प्रभुपाद जी है इसलिए वहाँ गए कि ताकि लोग वहाँ देखेंगे कि वहाँ विदेशी लोग भी कर रहे हैं, तो फिर हमें ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि 1000 साल की गुलामी के कारण भारत में लोग हैं अपनी ही संस्कृति को निम्न मानने लगे, घृणा करने लगे, तिलक लगाना, कंठी पहनना, धोती कुर्ता पहनना, रोटी सब्जी खाना, ये सब निम्न है। और आधुनिक जो है और जो विदेश में लोग कर रहे हैं वो सब फर्स्ट क्लास है, उसको जेंटलमैन गिना जाता है। हाँ तो ये मान्यताओं को दूर करने के लिए का काफ़ी कठिन कार्य है, पर प्रभुपाद जी जानते थे कि परिवर्तन लंबे समय तो सिर्फ भारतीय लोग हैं उन्हीं के पास संस्कृति है कि वो वही प्रचार के लिए ज़्यादा योग्य लोग हैं। विदेशी लोग प्रचार कर सकते हैं, भक्त बन जाएंगे तो वो भी, काफ़ी सारे इस्कॉन के सन्यासी प्रचार करते हैं, पर वहाँ पर पूरा जो सामाजिक माहौल है प्रचार करने के लिए और लोगों को भक्त बनने के लिए वो प्रतिकूल है। पर भारत के लोग अगर जागेंगे तो उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने सीखा है, साथ में संस्कृति भी है, तो उनका जन्म समाज संस्कृति इत्यादि सब वस्तु है अनुकूल है, तो इसलिए महाप्रभु की आज्ञा हम सबके लिए है कि भारत भूमि ते हेल मनुष्य जन्मजात जन्म सार्थक करी परोपकार जारी देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। तो भारत के युवाओं को महाप्रभु का ये मैसेज है कि हमें हमारी संस्कृति धरोहर इत्यादि को जानना है सीखना है, हमारे सगे संबंधी मित्र कलीग जो भी उन सबको उससे अवेयर करे जिस प्रकार से वो समझ सके उस प्रकार से उनके स्तर से उनको बताए कि ये किस प्रकार से उत्कृष्ट है, चाहे वो भौतिक विज्ञान शास्त्र में जो भी बताया है आध्यात्मिक विज्ञान सब प्रकार से सभी वस्तुएं उत्कृष्ट कक्षा के है क्योंकि वो भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। तो इन बातों को पहले तो अवेयरनेस लाने लोगों में जरूरी है, फिर जाकर वो भक्ति का महत्व समझ पाएंगे, उसके बेनिफिट्स देखेंगे उसके, तो वो समझ पाते हैं। तो इसलिए हम देखें अभी भारत में भी काफ़ी सारे लोग पढ़े लिखे और सिटी में रहने वाले लोग भी भले वो सिटी में है पर फिर भी महत्व समझ रहे कि ऑर्गेनिक अच्छा है वैदिक अच्छा है, कई लोग उसको एडप्ट कर रहे हैं, कई लोग अभी एटलीस्ट समझ रहे हैं कि ये जरूरी है हमारे लिए, हमारा वैदिक संस्कृति को बनाए रखना जरूरी है और वही फायदेमंद हमारे भविष्य के लिए है, और कई लोग उसको ग्रेजुअली एडप्ट भी कर रहे हैं, इसका महत्व इस दिशा में लोग जा रहे हैं अक्सर, ऑफकोर्स काफ़ी सारे लोग हैं उससे विपरीत दिशा में भी जा रहे हैं। तो हमारा पूरा जो प्रयोजन है प्रचार का, खासकर युवकों का प्रचार का, तो पहले उनको हमारे संस्कृति के विभिन्न अंगों से परिचित करें ताकि उसको अप्रिशिएट करेंगे, जब अप्रिशिएट करेंगे तो उसको एडप्ट भी करेंगे। एक बार जिस वस्तु की हम सराहना करते हैं तो उसको अपनाने में हमें देर नहीं लगती है, हाँ, तो वो फिर उसको बाकी सब अंगों को भी धीरे धीरे अपनाएंगे। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की गौर प्रेमानंदे हरे हरे।